ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் புஷ்பதன்ஸ் சிவ மஹிம ஸ்தோத்ரா இன் ஹிந்தி, ப்ரெசன்டட் பை சுவாமி நிஷ்தானந்தஜி சரஸ்வதி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
பாரத வர்ஷக்கு சிக்ஷா கியா? வேதாத்தியன் ஸ்வாத்தியாயோ அத்தியதவ்யஹ. ये विधि वाक्य यावत मनुष्य के लिए वेदाध्ययन की बात करता है, किंतु आजकल तो यह है नहीं, क्योंकि हमारे यहां क्या है, हमारी शिक्षा जो है ये प्रत्यक्ष लाभ की अनदेखी करके अप्रत्यक्ष यानी कि पारलौकिक और मोक्ष लाभ के लिए ही ज्यादा है। हमारे यहां विद्या का जो स्वरूप है, विद्या के द्वारा जो प्राप्त होने वाला सुख है, वो पारलौकिक सुख या मोक्ष के सुख को ध्यान में रख के हमारे यहां जो है शिक्षा पढ़ाई जाती है। अब ये पारलौकिक सुख और मोक्ष सुख दिखता तो है नहीं, और इस लोक में वो कष्ट से प्राप्त किया जाता है, तो हम लोगों का ये ह्रास नहीं आ रहा। हम लोग तो ये सोचते हैं कि हम इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करें जिससे यह लोक बढ़िया से चल जाए, इह लोक में सुखी हो जाए, इह लोक में जो है कोई विघ्न या कोई कष्ट न रहे। तो हम लोग जो इस समय जो प्रचलित विद्या है, वो विद्या का फल इह लोक है या पारलौकिक या मोक्ष भी है, बस इह लौकिक है। इसलिए कहते हैं मेरा लड़का बढ़िया से पढ़ के निकल जाए, बढ़िया से उनको सर्विस लग जाए, फिर हम शांति से रहे। किंतु क्या यही जीवन है क्या? इससे आगे कोई जीवन नहीं है? ये शरीर छोड़ने के बाद हमको कहीं जाना ही नहीं है क्या, और वहां का कोई विचार नहीं करना है क्या? मोक्ष के बारे में या हम इस ये प्रपंच से छूटे, जन्म और मृत्यु के चक्कर से छूटे, उसके लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि वो दिखता नहीं है, इसलिए हमको उसके विचार करने की फुर्सत ही नहीं है। इसलिए भगवान को अर्जुन ने पूछा कि भगवान, जब शास्त्र विधि को नहीं जानते हुए भी परंपरा से महापुरुषों के संदर्शन से, उनके समागम से, उनके वाक्य के ऊपर विचार करके या श्रद्धा करके जो कर्म करते जा रहे हैं, तो भगवान उनकी निष्ठा सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है? तो भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन, ऐसा है कि जो निष्ठा की तुम बात कर रहे हो, वो निष्ठा के निर्णय में कारण है उनकी श्रद्धा। किस प्रकार की उनकी श्रद्धा है, उससे वो व्यक्ति की निष्ठा का निश्चय होगा। इसलिए भगवान ने कहा श्रद्धा मयो यम पुरुष यो यत श्रद्धा स एव स। पुरुष श्रद्धा से श्रद्धामय है, इसलिए उनकी श्रद्धा किस प्रकार की है, उससे उनकी निष्ठा निश्चित की जाएगी। इसलिए सात्विक, राजसिक और तामसिक श्रद्धा, तीन प्रकार की श्रद्धा से व्यक्ति कर्म करता है, यज्ञ भी करता है, दान करता है, तप करता है, आहार करता है, इन सब में ये तीन चीज कारण होती है। यदि सात्विक श्रद्धा है तो वो सात्विक यज्ञ करेगा, सात्विक दान करेगा, सात्विक तप करेगा, सात्विक आहार करेगा। यदि उनकी निष्ठा या श्रद्धा राजसिक है तो वो राजसिक यज्ञ करेगा, राजसिक दान करेगा, राजसिक तप और आहार करेगा। यदि उनकी निष्ठा तामसिक है तो वो तामसिक यज्ञ, दान, तप, आहार वगैरह सारी क्रिया वो उसी अनुसार करेगा। इसलिए भगवान ने इन यज्ञ, दान, तप, आहार आदि का भगवान श्री कृष्ण ने 17वें अध्याय में तीन तीन प्रकार बताया। इसलिए हम उनको जाने कि ये सात्विक, राजसिक और तामसिक जो प्रकार है उसमें हमारे लिए क्या इष्ट है, हम अपने को नापे, देखे। जैसे कोई चीज को हम आंख से देखते हैं, ये देख रहा है कि ये टेबल है, किंतु हम कोई पूछे कि उनकी साइज बताओ, फुट से इंच से साइज बताओ, तो आप आंख से देख करके बता सकेंगे? आप कहेंगे अच्छा मेजर टेप मंगा दीजिए, फिट मंगा दीजिए, मैं बता दूंगा आप कितना है। क्या तुमको आंख से नहीं दिख रहा है? तो क्या आंख से दिख तो रहा, लेकिन उनका माप कितना है वो आंख से नहीं दिखेगा। उसके लिए चाहिए मेजर टेप, चाहिए मेजर टेप ला करके बता देगा ये 3 फीट है या 4 फीट है, जो भी नाप आएगा वो बता देगा। ठीक इसी प्रकार से हम जो ये यज्ञ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, आहार आदि सर्व क्रिया कर रहे हैं, वो आंख से तो बड़ी अच्छी लगती है कि हाँ कर रहे हैं इतना जरूर, किंतु वो सात्विक कोटि की है, राजसिक कोटि की है या तामसिक कोटि की है वो हम आंख से नहीं बता सकते हैं। जैसे माप के लिए मेजर टेप चाहिए, वैसे ही ये सात्विक आदि जो भेद है उन भेदों को जानने के लिए गीता का अध्ययन चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने इसको यहां बताया, उसको यदि हम पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि हम ये यज्ञ दान तप आहार वगैरह जो भी क्रिया कर रहे हैं वो सात्विक कोटि के, राजसिक या तामसिक कोटि के, इसका निश्चय हम फिर कर सकते हैं। अब क्रिया तो बहुत है, आहार आदि भगवान ने सबके 3 प्रभेद बताए, किंतु हम लोग जो विचार करेंगे केवल तप के बारे में, तो भगवान ने इसी बात को कहते हुए तप के भी 3 प्रकार बताए। तप क्या है तो भगवान जो है ये तप के बारे में, तप सात्विक, राजसिक और तामसिक प्रकार का है, किंतु भगवान जो है पहले ये बताना चाहते कि ये जो तप है अर्जुन, वो 3 प्रकार से तपा जाता है। शरीर से भी तपा जाता है और वाणी से भी तपा जाता है और मन से भी तपा जाता है। तो पहले हम लोग ये जाने तप के ये 3 प्रकार, के शरीर से तपा जाने वाला, मन से तपा जाने वाला और वाणी से तपा जाने वाला जो है वो तप का स्वरूप क्या है। भगवान देखिए पहले शरीर से तपा जाने वाला तप क्या है, वो 14वें श्लोक में बता रहे हैं। आप लोगों के पास गीता है तो आप देखिए, भगवान श्री कृष्ण देखो कहते हैं शरीर से जो तप किया जाता है उनका तप का स्वरूप क्या है, क्या शरीर को सुखा देना। देखिए इससे आपको पता चल जाएगा कि आखिर तप का स्वरूप क्या है। भगवान श्री कृष्ण शरीर के तप के बारे में क्या कहते हैं, संसार में चाहे तप की कैसी भी प्रसिद्धि हो उसको एक साइड में रख दीजिए और गीता के संदर्भ में आप देखें कि शारीरिक तप क्या है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्य महिंसाम च शारीरम तप उच्चते। देखिए शरीर से तपा जाने वाला तप, शरीर से हम तपस्वी है वो यदि देखना है तो क्या करना चाहिए, ये इनमें से हमारे अंदर कौन से गुण है, यदि इनमें से ज्यादा हमारे जीवन में गुण आए तो हमें बिल्कुल कह सकते हैं, शरीर हृष्ट पुष्ट होते हुए भी हमें कह सकते हैं कि हम तपस्वी है। देखिए क्या कहा, देव पूजनम, द्विज पूजनम, गुरु पूजनम और प्राज्ञ पूजनम। हम लोग पूजन तो करते ही रहते हैं, पूजन से तो हम विरत ही नहीं है। अब किसके पूजन से हम शरीर से तपने वाले तपस्वी कहे जाएंगे, तो देखिए देव पूजनम, देव पूजनम जो देवता का पूजन करता है वो मानो शरीर का तप कर रहा है। जो देवता, देवता से क्या, ब्रह्मा विष्णु शिव सूर्य और शक्ति, सनातन धर्म में ये 5 देव की पूजा उपासना प्रसिद्ध है। तो ये 5ों देव की जो पूजा उपासना, पूजन करना वो है शारीर तप। अब देखिए इसलिए हमारे यहां जो है इन देवताओं की पूजा प्रसिद्ध हो, प्रचलित हो, इसलिए हमारे यहां जो है इस प्रकार की सनातन धर्म की प्रणाली चली कि देवताओं की पूजा के लिए भी, पहले तो हमारे यहां यही कहा कि रोज 3 बार पूजन करना चाहिए, दो बार सुबह और शाम, कम से कम 2 बार सुबह और शाम तो करना ही चाहिए, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय भगवान की पूजा स्मरण करना चाहिए। जो रोज नहीं कर पाता है उनके लिए कहा हफ्ते में एक बार तो कोई ऐसे एक वार को ले लीजिए, जो सभी वार जो है देवताओं के संबंध में ही है हमारे यहां। चाहे आप रविवार से लेकर शनिवार तक देख लीजिए, उन सभी वारों के साथ देवता जुड़े हुए हैं। इसलिए हमको देवता ध्यान में रहे। हफ्ता में भी नहीं कर रहे तो कहा कि 15 दिन में तो कर ही सकते, पूर्णिमा और अमावस्या को तो करना ही चाहिए। और कहते हैं कि हम लोग मुंबई वासी समय कहां, महीने में भी नहीं हो पाता है। तो जब ऋतु परिवर्तन होता है या मास की संक्रांति होती है उस दिन जो है करना चाहिए। ऋतु परिवर्तन 2 महीना में होता, उस दिन भी नहीं तो कहा 6 मास में एक बार तो कर ही लो। उत्तरायण दक्षिणायन का अंत या शुरुआत होती है उस दिन कर लो। तब भी नहीं तो कहते हैं कि साल में एक बार तो कर ही लो। या कोई ऐसी पुण्यतिथि, देवताओं का जन्मदिवस, रामनवमी है, जन्माष्टमी है, या और कोई देवताओं की जयंती है, उस समय तो जो है सारे साल में कुछ भी नहीं किया है तो एक दिन में वो निपटा दो। उस दिन पूरा का पूरा वो देव पूजन में निकालो। यहां तक कि साल भर में भी नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, उससे आगे भी व्यवस्था है हमारे यहां। क्या करेंगे, कुंभ मेले में जाकर के स्नान कीजिए। वो आता है 6 साल में, एक जगह 6 साल में तो आता ही है। यहां तक कि 12 साल की हमारे यहां व्यवस्था है। 12 साल में कुछ नहीं किया तो 12 साल में एक बार एक ही जगह पड़ने वाले कुंभ में जाकर के स्नान कर लीजिए, देव पूजन कर लीजिए, तो वो 12 साल का लाभ मिल जाता है। यह है सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता कि व्यक्ति चाहे किसी भी समय, किसी भी देश, किसी भी परिस्थिति और किसी भी काल में देव पूजन कर सकता है। तो देवता का पूजन वो शरीर संबंधी तप है। और द्विज का पूजन क्या है, द्विज क्या है, जिसका 2 बार जन्म होता है, समझ में आए। द्विज का अर्थ है जिसका 2 बार जन्म होता है। 2 बार जन्म, आप कहेंगे कि क्या वो 2 बार गर्भवास करता है क्या, तो एक तो गर्भवास से जब उनका निस्सरण होता है तो उस समय वो एक जन्म हुआ, फिर दूसरा जन्म उपनयन संस्कार से होता है। उपनयन संस्कार से ही व्यक्ति जो है द्विज बनता है, दूसरी बार उनका जन्म होता है और वे वेदाध्ययन के लिए योग्य बन जाता है। फिर उपनयन संस्कार होने के बाद उसके ऊपर 3 ऋण चढ़ जाते हैं। एक देवता का ऋण चढ़ जाता है, एक ऋषि का ऋण चढ़ जाता है और पितृ का ऋण चढ़ जाता है। ये उपनयन संस्कार से पहले वो बालक है, उसके ऊपर कोई ऋण नहीं है, किंतु जैसे उपनयन संस्कार हुआ फिर वो ये 3 ऋणवान हो जाता है। फिर उनके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है कि मैं ये 3 ऋण का 3 ऋण से उऋण होऊं। इसे फिर आगे के लिए उनके लिए वेदाध्ययन है, वेदाध्ययन में वो वेद का अध्ययन करता है और उसके बाद वेद में जो अधीत कर्म है वो कर्म की जिज्ञासा करता है और जिज्ञासा के लिए वो कर्मानुष्ठान करने के लिए जैमिनी शास्त्र प्रणीत वेदांत वो मीमांसा का विचार करता है, जैमिनी सूत्र का, और तदनुकूल फिर वो कर्मानुष्ठान करता है। कर्मानुष्ठान करते हुए गृहस्थ आश्रम के बिताते हुए आगे जाकर के वो मोक्ष, इस तरह से प्रक्रिया पूरी। तो इस तरह ये द्विज है। द्विज का अर्थ है जैसे कहा, और द्विज का अर्थ है ब्राह्मण भी, क्योंकि उपनयन संस्कार तो त्रैवर्ण को होते हैं, केवल ब्राह्मण को होते हैं ऐसा तो है नहीं, इसलिए ब्राह्मण भी ले सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मण क्या है, वेद का अध्यापक है और या तो वैदिक कर्म को करवाने वाला है। उनके द्वारा यदि आप कर्म करते तो वो कर्म हम तो जानते नहीं, तो उनके द्वारा किया गया है वो उसमें हम श्रद्धा करके करते हैं तो वो जो हो जाता है सत्कर्म हो जाता है। और देखिए गुरु का पूजन। गुरु क्या है? गुरु से श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ और वैसे गुरु के पूजन के बारे में यहां पर टीकाकारों ने केवल गुरु शब्द का अर्थ जो ज्ञान ज्ञानदाता गुरु ही नहीं, मातृ पितृ आचार्य ऐसा कहा, माता पिता और आचार्य का पूजन हम लोग करते हैं क्या? माता पिता और आचार्य का पूजन ध्यान रखते हैं ना हम, माता और पिता का कि नहीं रखते? अच्छी बात है, ये होना ही चाहिए। माता और पिता का पूजन यानी कि तस्वीर का पूजन नहीं हो, नहीं तो आजकल देखने में तो यह आता है कि तस्वीर में तो बहुत बड़ी टंगी हुई है, बढ़िया हार भी पहनाया हुआ है, कोई आता है तो कहते हैं देखो ये हमारे माता जी की तस्वीर है, ये पिताजी की तस्वीर है, बहुत अच्छे थे, वो जीते थे पानी पिलाया, तो कहते हैं नहीं श्राद्ध पक्ष तो चल ही रहा है ना, जीते जी पानी पिलाने के लिए हमारे पास समय नहीं है। चार भाई है तो माता और पिता के चार हिस्से कर देते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी के चार हिस्से हो गए तो और माता और पिता के भी चार हिस्से कर देते हैं। हमारे यहां माता और पिता को सेवा के लिए कहा कि उसका हरदम ध्यान रखना है, उसको कोई तकलीफ न हो, लेकिन आजकल क्या हो गया, मदर्स डे फादर्स डे साल में एक बार जाकर के वो गिफ्ट दे दो, 364 दिन उनका कुछ भी हो है। और कहते हैं हमने मदर्स डे मनाया फादर्स डे मनाया, बड़े जोर शोर से प्रचार हो रहा है इसका, कितनी बड़ी विडंबना है कि हरदम जब माता और पिता का ध्यान रखा जाता है, हमारे वहां ऐसा आदर्श है, आज ये हालत है कि माता और पिता की हालत अब मैं कहने की तो ज्यादा जरूरत है ही नहीं। तो गुरु के पूजन के अंदर माता और पिता का पूजन ये एक बहुत बड़ी तपस्या है। माता और पिता का पूजन क्या है गीता के संदर्भ में क्या है? शरीर का तप है। आप और कुछ भी कर रहे हैं और माता और पिता दुखी है तो वो शरीर का तप नहीं है। शरीर का तप सबसे बढ़िया तप यह है कि माता पिता और गुरु की, जैसे देव द्विज गुरु और प्राज्ञ, उसमें ये माता पिता भी अंदर है, उनका पूजन ये शरीर का तप है। और प्राज्ञ का पूजन लीजिए, प्राज्ञ का पूजन, प्राज्ञ क्या है? जो गुरु से भी व्यतिरिक्त है, देव से द्विज से भी व्यतिरिक्त है, किंतु जो तत्वविद है, जो तत्वविद है उनकी भी पूजा। और इतना ही नहीं, कहने के लिए तो बहुत है किंतु मेरे पीछे समय भी पड़ा हुआ है, और ये शरीर का जो है संपूर्ण तप भी मेरे को बता देना है, क्योंकि तीन श्लोक आज करने हैं और तीन श्लोक कल करने हैं, इसलिए थोड़ा आगे भी बढ़े। देखो शौचम, ये भी शरीर का तप है। शौचम क्या है? बाह्य और आभ्यंतर शुद्धि को कहते हैं शरीर का तप। बाह्य शुद्धि क्या है? देखिए हम लोग जो बाह्य शुद्धि में तो जो है बहुत आगे है, किंतु वो बाह्य शुद्धि जो है पवित्र है वहां पर हम पीछे है, कि हम जो बाह्य बहुत शुद्धि रखते हैं घर में व्यवहार में बाहर से कपड़े में शरीर में, किंतु वो शुद्धि पवित्र कोटि की है उस बात का ख्याल नहीं है। भोजन में हम पवित्र भोजन कर रहे हैं, पीने में हम पवित्र पी रहे हैं, भोजन के हम पवित्र खा रहे हैं, वहां कोई शुद्धि वो ख्याल नहीं है। क्या खाद्य पवित्र है या अपवित्र है उनका विचार आजकल बिल्कुल समाप्त सा होता जा रहा है। लोग यदि अपेय और अखाद्य खाए तो उनको अच्छा समझा जाता है। ये सब जो है इनकी व्याख्या बदलती जा रही है इस समय, बड़ी विडंबना है। आगे और भी भगवान ने बताया आर्जवम। आर्जवम क्या है? देखिए जीवन में हर तरह से शरीर से, मन से और कर्म से सरलता, दंभ का अभाव, सरलता, बिल्कुल ऐसा सरल ऋजु जो हमारे पर सब विश्वास करे। औरों के विश्वास की हमको जरूरत तो है, किंतु हम अपने व्यवहार को विश्वासार्ह नहीं बना पा रहे। इस प्रकार से जो है हम अपने को ऐसे उलझा रखे हैं कि हमको विश्वासार्ह होने की आवश्यकता हमको जरूर दिखती है, किंतु विश्वासार्ह लक्षण हमारे अंदर आने चाहिए, वो लक्षण की बहुत कमी है। इसलिए हम फिर क्या कहते हैं, चद्दर ओढ़ लेते हैं। चद्दर समझ में आया? विश्वासार्ह की चद्दर। और ऐसा कहते हैं देखो हम विश्वासार्ह है, और फिर कोई फंसता है तो चद्दर निकाली जाती है। समझ में आ गया? बहुत कहने की जरूरत तो नहीं है ना, यही है विश्वास। तो सरलता, इससे इनका अभाव हो उसको कहते हैं सरलता। इसलिए आर्जवम का अर्थ है अंदर से और बाहर दोनों तरफ से सरल जीवन। सरल जीवन बनाने को रहूंगी दूर पापों से। समझ में आए? प्रार्थना है भगवान की कि भगवान मैं अपना जीवन सरल बनाऊं, इसलिए मैं पापों से दूर रहूंगी। तो ये आर्जवम। और भी देखिए ब्रह्मचर्यम, अहिंसा इत्यादि। ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य है देखिए निषिद्ध मैथुनम, उसको कहते हैं ब्रह्मचर्य। निषिद्ध मैथुन का त्याग, यानी कि पुत्रोत्पत्ति के लिए ही जो है आवश्यक जो है मैथुन आदि क्रिया को करना, कहते हैं ब्रह्मचर्यम। आजकल ये इसकी व्याख्या बहुत बदलती जा रही है। अभी दो चार दिन पहले ही एक बुद्धिजीवी ने लिखा था अखबार में कि ये पुत्रोत्पत्ति की जो बात है, ये मैथुन आदि का जो भोग का सुख है उसका स्वरूप ऐसे बदल जाएगा। उन्होंने बहुत नजीकी समय बताया था, किंतु हम नहीं मानते कि वो भारतवर्ष में हो सकता है अन्यत्र। उन्होंने ये लिखा था कि पुत्रोत्पत्ति की जहां तक बात है तो वो जो है कोई बोतल में वो होगा, गर्भवास की गर्भ में बालक को पालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गर्भ में बालक पलेगा तो शरीर का आकार बिगड़ जाएगा। ये चिंता के कारण वो जो प्रक्रिया है उसको एक अन्यत्र अलग से एक बोतल है, उस बोतल में उसको फलित किया जाएगा, वहां बालक का विकास होगा और हमारा शरीर बरकरार रहेगा और हम जो है इस तरह से अपने जीवन को भोग में बनाते रहे। ये व्याख्या बदलती जा रही है ना। तो जैसे हमारे यहां कहा कि मैथुन क्रिया केवल पुत्र उत्पत्ति के लिए है, और पुत्र किसके लिए है? पुत्र की आवश्यकता क्या है? पुत्रेण जय्यो अयम लोकः, कर्मणा पितृलोक विद्या देवलोक। यदि इस लोक में और परलोक में यदि जय प्राप्त करनी है तो उसके लिए पुत्र है। पुत्रेण जय्यो अयम लोक, बृहदारण्यक उपनिषद कहती है कि इस लोक में जय को प्राप्त करना है तो पुत्र की आवश्यकता है, और पितृलोक में जय प्राप्त करना है तो सत्कर्म की आवश्यकता है, और ब्रह्म लोक में विजय प्राप्त करनी है तो उपासना की आवश्यकता है। ये तीनों क्रिया की आवश्यकता हमारे जीवन में है। तो ये ब्रह्मचर्य की बात हुई संक्षेप से। और आगे भगवान ने कहा अहिंसा। अहिंसा माने देखो, जैसे अभी मैंने पहले ही बता दिया अहिंसा का स्वरूप, अशास्त्र प्राणी पीड़न का अभाव, प्राणी पीड़न का अभाव, किंतु कैसा? अशास्त्र प्राणी पीड़न का अभाव, इनको कहते हैं अहिंसा। और ये सब करना इनको कहते हैं शारीर तप। देखिए ये शरीर संबंधी तप है, इसलिए हम कहें कि हम शरीर से, देखिए भूखा रहना ये भी आवश्यक है ये नहीं, किंतु ये सब छोड़ कर यदि करे तो वो इससे आगे तो ये है कि ये शरीर संबंधी तप तपे। और वाणी के तप की बात है कि वाणी से यदि हम तप तपते हैं तो वाणी के तप के बारे में देखो, शरीर के संबंध में हमारी भ्रांति जरूर मिट गई होगी कि शरीर संबंधी तप जो है गीता में भगवान ने कैसा बताया है, ये सब क्रिया करने से शरीर संबंधी तप कहा जाता है, इसलिए ये करते हैं तो हम शरीर से तपस्वी कहे जा सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वाणी के तप जो है भगवान ने 15वें और 16वें श्लोक में बताया है। अब वाणी का तप क्या है उसको हम कल ही जहां तक हो सके संक्षेप से करने का प्रयत्न करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम। पूज्य महाराज जी के चरणों में वंदन। आज और कल महाराज जी द्वारा प्रवचन जो तप विषय पर रखा गया है, आज श्राद्ध पक्ष में माता जी से हमने ओम नमः शिवाय और भक्ति योग की बातें सुनी और तप जो 2 दिन तक हमें किस तरह से हम ईश्वर को प्रसन्न करें और कैसे जीवन जिए उसके बारे में बताएंगे। पहली और दूसरी तारीख को जो हमारे स्वाध्याय प्रवचन में आने वाले हैं धर्मानंद जी महाराज, उनका प्रवचन 2 दिन तक जो स्वाध्याय प्रवचन चल रहा है वेदांत परिभाषा, उसको सूचित करते हुए 2 दिन उनके प्रवचन रहेगा प्रातः, जिससे स्वाध्याय में वेदांत परिभाषा कितना उपयोगी है अपने जीवन में उसकी बातें महाराज जी द्वारा बताई जाएगी। कल पूज्य धर्मानंद जी महाराज से फोन में बात हुई, एक दुखद घटना की भी उन्होंने बात की, आपसे मैं ये कहना चाहूंगा। 13 तारीख को कैलाश आश्रम के मंत्री और उनके पूर्व मंत्री, जो बहुत ही यंग संत थे दोनों, 30-32 साल की कुछ उम्र थी, और भी दो तीन और भी गृहस्थ साथ में थे, कुछ देहरादून के आसपास में गाड़ी खड्डे में गिर जाने से उनका जो देवलोग वो 2 संत पधार गए, उनको हम यहां वंदन करते हैं, आज उनकी शोरसी है। तो यह जो दुखद घटना हुई वो यहां से हम उनको प्रणाम करते हुए आज शोरसी विधि में ईश्वर को प्रार्थना करते हैं कि जो भी उनके साथ गृहस्थ भी रहे सबको उनकी आत्मा की शांति दे। हरिओम। बाकी कार्यक्रमों के बारे में स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट आयोजित श्री धनेश जसंतलाल मेहता स्मृति व्याख्यान माला के अंतर्गत प्रसिद्ध भजनीक श्री मती यशोदा गायक के भजन एवं पूज्य श्री हरिभाई कोठारी द्वारा वंदनीय जीवन इस विषय पर प्रवचन होगा। हरिभाई कोठारी का प्रवचन आज और कल होगा। यह व्याख्यान माला 5:15 से 7:30 के दरमियान आज और कल चलेगी। आज के श्रेय स्मृति के यजमान है श्री किशनलाल केजरीवाला की ओर से श्रीमती बिजू देवी बरेलिया की ओर से श्री जेठालाल मेहता की ओर से श्रीमती मानसा गौरी जे मेहता की स्मृति में श्री श्रीचंद डी छाबड़िया की तथा वासुदेव छाबड़िया की ओर से श्रीमती उत्तमीबाई डी छाबड़िया की स्मृति में श्री कुलीन परसोत्तम भाई की ओर से श्री परसोत्तम भाई श्री मस्काई की स्मृति में मैसर्स संघवी ड्राई क्लीनिंग कॉरपोरेशन की ओर से श्री विजय भवानी दास के जन्मदिन के अवसर पर श्रीमती भानुबेन ए पटेल की ओर से श्री अम्बालाल जी पटेल की स्मृति में तथा श्रीमती सरस्वतीबेन बी पारेख की ओर से श्रीमती नानीबेन जे पारेख की स्मृति में आप या आपके परिवार के सदस्य यहां उपस्थित हो तो पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद एवं प्रसाद ग्रहण करें। अब शांति पाठ होगा। हरिओम।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिओम। नारायण।